परलोक और पुनर्जन्म क्या ये सत्य है? सेठ जी का विचार, आत्मा की उन्नति तथा जगत में धार्मिक भाव, सुख शांति, प्रेम के विस्तार और पाप ताप से बचने के लिए परलोक और पुनर्जन्म को मानना परम आवश्यक है। आज संसार में जो पाप बढ़ रहे हैं, चोरी, हिंसा, व्यभिचार, अनाचार, झूठ, कपट और व्यक्तियों के भांति राष्ट्रों में भी परस्पर में द्वेष और कलह हो रहा है, उसका एकमात्र कारण परलोक और पुनर्जन्म में श्रद्धा नहीं है। तभी तो लोग इंद्रिय लोलुप हो रहे हैं, भक्ष्य अभक्ष्य का विचार नहीं करते हैं, एक दूसरे के प्रति विश्वास कम हो रहा है, बेईमानी और घूसखोरी खूब हो रही है, मुकदमाबाजी बढ़ रहा है, अपराधों की संख्या बढ़ रही है, असंतोष, असहिष्णुता इतनी बढ़ गई कि बात बात पर लोग आत्महत्या करने लगे हैं, आत्महत्या उत्तरोत्तर बढ़ रही है, दंभ और पाखंड की वृद्धि हो रही है, आत्मा की अमरता तथा परलोक में विश्वास नहीं है और लोगों ने वर्तमान जीवन को ही अपना जीवन मान लिया है, इसके आगे कोई जीवन स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है, घर घर के अंदर कलह हो रहा है, माता पिता, पुत्र, भाई, बंधु, इन सब में आपस में कलह होता है, इसलिए कि ये परलोक और पुनर्जन्म पर विश्वास नहीं करते हैं। खाओ पियो, सुख से रहो, यावत जीवेत सुखम जीवेत, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, भस्मी भूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। खाओ पियो, मौज उड़ाओ, किसी नहीं है तो किसी से पैसा ले लो, हाँ साहब हम तुमको थोड़े दिनों में दे देंगे, ऋणम कृत्वा, ऋण भी ले लो भले ही, और फिर किसी का ऋण क्या देना है, मर मरा जाएंगे, नक्की हुआ और क्या है। ऐसी ऐसी लोगों की भावना है, उसका एकमात्र कारण परलोक और पुनर्जन्म को न मानना है। परलोक और पुनर्जन्म के सिद्धांत का प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सब प्रकार से हमारे शास्त्रों ने खूब विचार किया है, इसलिए अपने जीवन को संभालने के लिए परलोक पुनर्जन्म को मानना चाहिए। कठोपनिषद में नचिकेता का उपाख्यान जीता जागता प्रमाण है। नचिकेता और यमराज के बीच जो संवाद हुआ है वो बहुत महत्वपूर्ण है। यमराज ने उसे 3 वर देने को कहा, उसमें 3रा वर मांगता हुआ नचिकेता प्रश्न करता है कि मरे हुए मनुष्य के विषय में जो ये शंका है कि कोई कहते हैं कि मरने के अनंतर आत्मा रहता है, कोई कहते हैं नहीं रहता है, इस विषय में मैं आपसे उपदेश चाहता हूँ जिससे मैं इस विषय का ज्ञान प्राप्त कर सकूँ, मेरे मांगे हुए वरों में 3रा वरदान है। यमराज से कहा कि आत्मा के विषय में बताओ कि है कि नहीं है, कि मरता है कि क्या है, कई तो कहते हैं कि कुछ नहीं होता, कई कहते हैं, तो आप बताओ, आप यमराज जी हो। यमराज जी ने कहा कि तू इसके बदले में मेरे से कितना ही धन मांग ले, तू कह तेरे को आयु दे दूं, लेकिन इस प्रश्न का उत्तर तू मेरे से मत ले। तो यमराज ने अधिकारी की परीक्षा करने के लिए इसको टालना चाहा और नचिकेता को मनुष्य लोक के बहुत बड़े बड़े दुर्लभ भोगों का प्रलोभन दिया। नचिकेता अपने निश्चय से नहीं टला। नचिकेता ने यही कहा कि मैं इस वरदान से टलूंगा नहीं, मुझे आत्मा के विषय में बताओ। तो यमराज बड़े प्रसन्न हो गए और प्रशंसा करते हुए कहने लगे, न सांपरा यह प्रतिभाति बालम प्रमाद्यंतम वित्तमोहे न मूढ़म, अयम लोको नास्ति पर इति मानी पुनः पुनर्वशमा पद्यते मे। जो मूर्ख है धन के मोह से अंधे होकर प्रमाद में लगे रहते हैं, उन्हें परलोक का साधन नहीं सूझता है। बस यही लोक है, अयम लोक है, न अस्ति पर है, दूसरा लोक कुछ नहीं होता, आगे किसने देखा? कोई आके कहे सुनावे तब तो माने, ना ना। ऐसे मानने वाले लोग हैं, देखो नचिकेता जी, ऐसे मेरे चंगुल में फंसे हुए ही मानो, वो मेरे चंगुल से बच नहीं सकते, बार बार जन्मेगा और मरेगा। फिर यमराज जी ने आत्मा के विषय में बताया, न जायते म्रियते वा विपश्चित नायम कुतश्चित न बबूह व कश्चित। गीता से थोड़ा मिलता जुलता, अजो नित्य शाश्वतो यम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। देखो नचिकेता, ये आत्मा चिन्मय है, ये जन्मता नहीं इसलिए मरता नहीं, और मरता नहीं इसलिए जन्म लेता नहीं, जन्मता नहीं इसलिए मरता नहीं, मरता नहीं इसलिए जन्मता नहीं, न तो पैदा होता है और न स्वयं कुछ किसी बनावट से बना है, न किसी का कारण है, न किसी का कार्य है, न विकार्य है, कुछ भी नहीं है, है ज्यों का त्यों है, अजो नित्य शाश्वत है। इससे भी यही सिद्ध होता है आत्मा की अमरता है। आगे चलकर यमराज उन मनुष्यों की गति बतलाते हैं जो आत्मा को बिना जाने ही मृत्यु को प्राप्त होते हैं। यमराज जी कहते हैं, सुनो नचिकेता, योनि मन्ये प्रपद्यन्ते शरीरत्वाय देहिनः स्थाणु अन्ये अनुसंयन्ति यथा कर्म यथा श्रुतम। जो लोग आत्म तत्व को नहीं जानते, वो यथा कर्म, जैसा कर्म किया है उस कर्म के अनुसार पशु पक्षी आदि न जाने किन किन योनियों को प्राप्त होते रहते हैं। इससे भी आत्मा की सिद्धि अमरता होती है और शरीर आदियों का बार बार जन्मना सिद्ध होता है। गीता ने तो कह ही दिया, न त्वेवाहं जातुनाशं न त्वं नेमे जनादिपाः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम। तुम हम पहले नहीं थे ऐसी बात नहीं, आगे नहीं रहेंगे ऐसी बात नहीं, पहले भी थे आगे भी रहेंगे। इससे भी परलोक और पुनर्जन्म की सिद्धि होती है। देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति न जायते मृते वा कदाचित वासांसि जीर्णानि यथा विहाय। और भी भगवान कहते हैं अर्जुन से कि अर्जुन, बहुनी में व्यतीना व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन है, तान्यहम वेद शर्माणि न त्वं वेत्थ परंतप। एक संतों ने मजाक में कहा कि भाई अर्जुन का जन्म कब हुआ, तो बहुनी में व्यतीतानि, भगवान कहते हैं कि मेरे तो बहुत से जन्म हो गए, तेरा जन्म कब हुआ? बहुनी में व्यतीना व्यतीतानि जन्मानि तब चार जून है, तेरा चार जून को जन्म हुआ तेरा जन्म चार जून को हुआ, तब बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तब चार जून है, तेरा जन्म चार जून को हुआ। तो गीता आदि शास्त्रों में स्वर्ग लोक का उदाहरण मिलता है, तो पुनर्जन्म और परलोक, इनकी आवृत्ति अनावृत्ति गतागत माने आना जाना सब है। योग भ्रष्ट का भी वर्णन मिलता है, यदि आदमी साधन भजन में च्युत हो जाता है तो ऊंचे लोक में जाता है, फिर वो श्रीमानों के घर आता है अथवा ज्ञानियों के लोक में आता है। तो इससे सिद्ध होता है कि आत्मा की अमरता है और कर्म के अनुसार उसको ऊंचे नीचे लोक मिलते हैं। योग शास्त्र में भी लिखा है, क्लेश मूल है कर्माशयो दृष्टा दृष्ट दृष्टा दृष्ट जन्म भेदनीय है। क्लेश माने पांच प्रकार का क्लेश, अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश, पांच क्लेश है। और अनेक कर्माशय है, कर्म की वासनाएं है। क्लेश मूल है कर्माशयो दृष्टा दृष्ट जन्म वेदनीय है, तो उससे तो भाई उसको जन्म जो है मरण उसका तो होता ही रहता है। सती मूले तद विपाको जात्यायुर्भोगे, जब कर्मों का परिपाक होता है, जैसे फल लगता है तो वृक्ष में फल लगने के बाद फिर एकदम पक जाता है, ऐसी कर्मों का भी परिपाक होता है। तो लोग कहते हैं कि साहब देखो इतना पाप करता है और बड़े आराम से रह रहा है, नहीं अभी कर्म कर रहा है, इसका ये पका नहीं है अभी। तो सती मूले तद विपाको जात्यायुर्भोगे, कर्म का विपाक होता है तब उसका भोग होता है। और भी मनुस्मृति में आया है कि जब सात्विक भाव होते हैं तो देवता को प्राप्त होता है, देवयोनि को, और राजस भाव में मरता है तो मनुष्य योनि मिलती है, तामस भाव में जाता है तो तिर्यक योनि मिलती है। इसके आगे ब्रह्म हत्या, सुरापान, पर गुरु पत्नी गमन आदि महापातकों का भी उल्लेख होता है। ब्रह्म हत्या करने वाले कुत्ते, सुअर, गधे, चांडाल आदि योनियों को प्राप्त होते हैं। ब्राह्मण होकर मदिरा पान करने वाला कृमि, कीट, पतंग तथा हिंसक योनियों में जन्म लेता है। गुरु पत्नी गामी होता है वो तृण, गुल्म, लता आदि स्थावर योनियों में सैकड़ों बार जन्म लेता रहता है। अभक्ष्य भक्षण करने वाला वो कृमि कीड़ा होता है। इस प्रकार परलोक और पुनर्जन्म के प्रतिपादक हमारे पास अनेक शास्त्र भरे पड़े हैं। वाल्मीकि रामायण में युद्ध के बाद दशरथ जी का आना और राम लक्ष्मण आदि से वार्तालाप करना परलोक का जीता जागता प्रमाण है। पितरों के निमित्त दिया हुआ पिंडदान, श्राद्ध तर्पण का उल्लेख आता है। अध्यात्म रामायण में भी राम जी महाराज ने अपने पिता दशरथ जी की मृत्यु का समाचार सुनकर उनको पिंडदान देने का वर्णन मिलता है, वाल्मीकि रामायण में भी मिलता है। बहुत से लोग शंका करते हैं कि मरने के बाद आत्मा रहता है या नहीं, किए हुए कर्मों का फल कर्ता को परलोक में मिलता है या नहीं, मृत व्यक्ति के लिए दिया हुआ पदार्थ उसे मिलता है या नहीं, और मृत व्यक्ति मुक्त हो गया तो उसके प्रति दिया हुआ पदार्थ का क्या होता है, वो उसको मिलता है कि नहीं मिलता है। इन प्रश्नों का समाधान यह है कि मरने पर आत्मा अवश्य रहता है तथा किए हुए का कर्म का फल कर्ता को अवश्य मिलता है। यह इस लोक में भी मिल जाता है और शेष बचा हुआ परलोक में भी मिलता है, और मृत व्यक्ति के लिए जो दिया जाता है वो उसे प्राप्त होता है। किंतु जो मृत व्यक्ति मुक्त हो गया उसके प्रति दिया हुआ जो पुण्य है वो संचित कर्म रूप कोष में जमा हो जाता है जो करने वाला है। जैसे आपने अपने पिताजी के लिए श्राद्ध किया और पिताजी मुक्त हो गए, अब वो जो है आप वो कर्म आपके अंदर जमा हो गया। ये बात युक्ति संगत है। जो आदमी जिस व्यक्ति के नाम से बैंक में रुपया जमा कराता है उस व्यक्ति के नाम रुपया जमा हो जाते हैं, और जिसके नाम से जमा होते हैं उसी को मिलते हैं, दूसरे को नहीं मिलते। और जैसे जहां रुपया जमा कराए, जैसे यहां जमा कराए हुए रुपये विदेश में वहां के सिक्के के रूप में मिलते हैं, वैसे ही पितरों के नाम से किए हुए पिंड तर्पण, ब्राह्मण भोजन आदि कर्म का जितना मूल्य आंका जाता है उतने ही मूल्य का उस प्राणी को उस योनि में पदार्थ मिल जाता है, वहां की आवश्यक वस्तु के रूप में उसको मिलता है। यदि वह प्राणी गाय है तो उस चारे के रूप में चारे के रूप में मिलेगा, देवता है तो अमृत के रूप में मिलेगा, मनुष्य है तो अन्न के रूप में मिलेगा, बंदर है तो फल के रूप में मिलेगा। कहने का मतलब है जो प्राणी जहां है उसका जो खाद्य है वो उसको मिल जाएगा। यदि कहें कि जीवित व्यक्ति के लिए भी यदि कोई यज्ञ दान अनुष्ठान व्रत उपवास आदि कर्म करता है तो क्या उसे मिलता है, तो इसका उत्तर यह है कि अवश्य उसे मिलता है। नहीं तो फिर यजमान के लिए जो ब्राह्मण यज्ञ तप अनुष्ठान पूजा पाठ आदि करते हैं वो किसको मिलेगा, न्यायतः वो यजमान को ही मिलेगा, कर्म करने वाले ब्राह्मण को नहीं, क्योंकि ब्राह्मण को तो दक्षिणा के बाद उस कर्म का संबंध विच्छेद हो गया। यदि कोई प्राणी मुक्त हो गया है तो तो उसके निमित्त किया हुआ कर्म कर्ता को मिलता है। जैसे किसी आदमी को रजिस्ट्री चिट्ठी या बीमा भेजी जाती है और जिसको भेजी जाए वो आदमी मर गया तो फिर वे लौट कर भेजने वाले को ही वापिस मिलती है, इसी प्रकार इस विषय में समझना चाहिए। अब हम आपको कुछ ऐसे प्रमाण बताते हैं कि जिससे परलोक और पुनर्जन्म का सिद्धांत सिद्ध होता है। पहला, शरीर की तरह आत्मा का परिवर्तन नहीं होता। शरीर में तो हम सभी के अवस्थानुसार परिवर्तन होता देखा जाता है। आज जो हमारा शरीर है कुछ वर्ष बाद वह बिल्कुल बदल जाएगा, उसके स्थान में दूसरा ही शरीर बन जाएगा, नख की आकृति बदल जाएगी, केस बदल जाएंगे, नए आ जाएंगे। बाल्यावस्था में हमारे छोटे छोटे कोमल कोमल अंग थे, कद हमारा छोटा था, स्वर में बड़ा मीठापन था, वजन भी कम होता था और मुख के ऊपर रोएं नहीं थे। जवान होने पर हमारे अंग पहले से कठोर हो गए, आवाज भारी हो गई, कद लंबा हो गया, वजन बढ़ गया, दाढ़ी मूंछ आ गई। इस प्रकार बुढ़ापे में हमारे अंग ढीले हो गए, शरीर की सुंदरता गायब हो गई, चमड़ा एकदम शिथिल हो गया, बाल पक गए, दांत ढीले ढीले हो गए, गिर जाते हैं, शरीर तथा इंद्रियों की शक्ति क्षीण हो जाती है। यही कारण है कि बालकपन में देखे हुए किसी व्यक्ति को उसके वृद्ध होने पर हम सहसा नहीं पहचान पाते, परंतु शरीर बदलने पर भी हमारा आत्मा नहीं बदलता। जो बालकपन में थे वही हम रहते हैं। यदि आत्मा बदल गया होता तो हम ये कैसे बताते कि जो मैं बालकपन में था वही आज वृद्धावस्था में हूँ। शरीर को लेकर तो बोला नहीं जाता, वो किसको लेकर बोलता है? ऐसा अनुभव करने वाला, स्मरण करने वाला कोई दो नहीं है बल्कि एक ही है, और वो आत्मा नहीं बदलता। इस बात को हृदय से स्वीकार करता है परंतु मानता नहीं है, इससे आत्मा की नित्यता सिद्ध होती है। दूसरी बात, मनुष्य अपना अभाव कभी नहीं देखता। वह कभी नहीं सोचता कि एक दिन मैं नहीं रहूंगा अथवा मैं पहले नहीं था। अपने अभाव के बारे में आत्मा की ओर से उसे कभी समर्थन नहीं मिलता है। वह यही सोचता है कि मैं सदा से हूँ, सदा ही रहूँगा। इससे भी आत्मा की नित्यता सिद्ध होती है। तीसरी बात, बहुत ध्यान से, बालक जन्मते ही रोने लगता है और जन्मने के बाद कभी हंसता भी है, कभी रोता भी है, कभी सोता भी है, और जब माँ उसको दूध पिलाती है तो वो माँ के शरीर में से दूध खींचने लगता है और धमकाने आदि पर वो बच्चा कांपता है और आंखों से टप टप आंसू गिरते हैं। बालक के ये सब आचरण पूर्व जन्म को सिद्ध करते हैं, क्योंकि इस जन्म में तो उस किसी ने उसको रोना सिखाया नहीं, हंसना सिखाया नहीं, माँ के शरीर से दूध खींचने की विद्या सिखाई नहीं, और भय आदि किसी ने उसको बताया नहीं, समझाया नहीं। पूर्व जन्म के अभ्यास से ही तो ये सब बातें अपने अंदर स्वाभाविक रूप से प्रकट हो रही हैं। पूर्व जन्म का अनुभव किए बिना सुख दुख का स्मरण करके वे हंसता रोता है। पूर्व जन्म में किए हुए भय के कारण ही तो वो कांपता है। पूर्व जन्म में किए हुए स्तनपान के अभ्यास से वो माता के स्तन का दूध खींचता है, इससे पुनर्जन्म की सिद्धि होती है। अब अपने जवान हो गए ना, जवान हो गए, अवस्था डल गई, बूढ़े हो रहे, लेकिन मृत्यु के नाम से अभी भी डर लगता है। अरे कह मत देना कि कैंसर की बीमारी है, डॉक्टर कहता है तो कैंसर, कह मत देना नहीं तो बड़ी तकलीफ हो जाएगी, मर जाएंगे। हार्ट की बीमारी बता मत देना, मर जाएंगे, तो डर लगता है। तो मरने का डर क्यों लगता है? कि हम पिछले शरीर में मरे हैं और उस मरने का दुख हमारे अंदर बैठा हुआ है संस्कार में, वो संस्कार वापिस पैदा होता है, तो इससे पुनर्जन्म सिद्ध होता है। जीवों में जो सुख दुख का भेद है, प्रकृति और स्वभाव का भेद है, काम क्रोध राग द्वेष आदि की न्यूनाधिकता है, क्रिया का भेद है, बुद्धि का भेद है, यह भी तो पूर्व जन्म की सिद्धि है। एक ही माता पिता के संतानों में, यहाँ तक कि कभी कभी तो देखा जाता है एक साथ पैदा हुए दो बच्चों में अलग अलग स्वभाव मिलता है। पूर्व जन्म के संस्कारों के अतिरिक्त इस भिन्नता में दूसरा कोई कारण नहीं है। जिस प्रकार ग्रामोफोन की चूड़ी पर उतरे हुए किसी गाने को सुनकर हम ये अनुमान करते हैं कि इसी प्रकार किसी मनुष्य ने इस गीत को कहीं गाया होगा, तभी तो आज ये ग्रामोफोन में चल रहा है। इसी प्रकार आज हम किसी को सुखी दुखी देखते हैं, अथवा अच्छे बुरे स्वभाव और बुद्धि वाले को देखते हैं, तो ये मालूम होता है कि उसने पूर्व जन्म में कोई अच्छे बुरे कर्म किए हैं जिनका इसके अंदर संस्कार है। यदि किसी को वर्तमान जीवन में हम सुखी पाते हैं तो इसका मतलब यह है कि उसने पूर्व जन्म में अच्छे कर्म किए हैं, और दुखी देखते हैं तो इसका मतलब है कि पूर्व जन्म में अशुभ कर्म किए हैं। इस बात से भी पूर्व जन्म की सिद्धि होती है। यदि कोई कहे कि संस्कारों के भेद के लिए पूर्व जन्म को मानने की क्या आवश्यकता है, ईश्वर की इच्छा कोई इसमें मान लो, भाई भगवान की इच्छा है, इनका स्वभाव और है, इनका स्वभाव और है, मेरा स्वभाव, और भगवान की इच्छा से हो गया, ऐसा मानो, क्यों आप पूर्व जन्म की बात मानो। ऐसा यदि कोई कहे तो ये बात ठीक नहीं है। कारण कि इससे ऐसा होगा कि ईश्वर यदि अलग अलग स्वभाव बनाएगा और ईश्वर किसी को सुख और दुख देगा तो ईश्वर के अंदर विषमता का दोष आ जाएगा कि देखो आपको तो खूब पैसा दे दिया, आपको खूब सुख दे दिया, हमको नहीं दिया, ईश्वर ने हमारे साथ पक्षपात कर दिया। और वैषम्य दोष तो इस बात को लेकर आएगा कि उन्होंने अपने मन से किसी को सुखी किसी को दुखी बना दिया। और निर्दयता का दोष इसलिए आएगा कि बिना मतलब दुखी क्यों बनाया, हमारा क्या कसूर कि हमको दुखी बनाओ। और तीसरी बात, ईश्वर किसी को दुखी बनाते नहीं है, बड़े दयालु है। ये सब बातें अटपटी हो जाएंगी, इसलिए परलोक और पुनर्जन्म मानना चाहिए। फिर भी कोई मान सकता है कि पुनर्जन्म तो ठीक है लेकिन परलोक नहीं मान सकते। ऐसी स्थिति में यदि उसकी बात सत्य हो तो उससे हमारे कोई हानि नहीं, बल्कि परलोक न होने की स्थिति में परलोक को न मानने वाले को विशेष लाभ होता, तो मानने वाले को कोई दंड मिलता हो, ऐसी बात तो है नहीं। किंतु यदि हमारे पक्ष के अनुसार परलोक है तो हमारी मान्यता हमारे लिए लाभदायक होगी, क्योंकि हम परलोक को मान करके दुर्गति से बचेंगे, पाप से बचेंगे, तो उसका दंड भी हमको नहीं मिलेगा, बुरा काम नहीं करेंगे तो परलोक का सुख हमको मिलेगा, हम अच्छा काम करेंगे। लेकिन जो परलोक को नहीं मानेगा वो तो चाहे जैसा ही कर्म करेगा तो वो घाटे में रहेगा। परलोक न मानने से मनुष्य में पशुओं की अपेक्षा और अधिक उच्छृंखलता आएगी। उच्छृंखल मनुष्य झूठ बोलेगा, कपट करेगा, चोरी करेगा, जारी करेगा, हिंसा करेगा, पाप कर्म करेगा, क्रोध मोह और मोह अहंकार आदि में डूबा रहेगा। ये पतन के महान कारण है। और परंतु परलोक को मानने से बड़ा भारी लाभ होता है। सबसे बड़ा लाभ है बुरे कर्म से बचता है, अच्छे कर्म में प्रवृत्त होता है, भगवान के भजन की तरफ लगता है। परलोक सत्य है और सत्य बात को मानने से कल्याण होता है। तो आत्मा नित्य है, शरीर के नाश होने पर भी आत्मा का नाश नहीं होता, शुभ अशुभ का कर्म फल अगले जन्मों में भोगना पड़ता है, इस वास्तविकता को स्वीकार करना चाहिए। शाश्वत और निरतिशय सुख प्राप्त करने के लिए मनुष्य को यत्नवान होकर परमात्मा के भजन में लगना चाहिए। माम उपेत्य पुनर्जन्म दुखालयम अशाश्वतम नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिम परमांगता। गीता ने साफ कह दिया कि जो भी महापुरुष परम सिद्धि को प्राप्त होकर मुझे प्राप्त हो जाते हैं वे पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होते। इसलिए परमात्मा की प्राप्ति से ही हमारा पुनर्जन्म छूटता है। वे संसार में बड़े चतुर होते हैं। अब इसमें उदाहरण दे रहे हैं। कल एक उदाहरण दिया एक महात्मा जी ने कि हम ही तो दादा थे बाबा थे और हम ही लड़का बनकर आए। सत्य घटनाएं हैं सब। प्रेत योनि के बाद पुनर्जन्म। बहुत वर्ष पहले जिला मुजफ्फरनगर में एक ग्राम में ऐसी आश्चर्यजनक घटना घटी जो हमारे शास्त्र प्रमाणों के शास्त्र पुराणों की बातों को डंके की चोट सत्य सिद्ध करने वाली है। हमारे शास्त्रों में पुराणों में पुनर्जन्म और प्रेत योनि प्राप्त करने से संबंधित एक बालक के जीवन में चरितार्थ होकर आज के घोर नास्तिक और अविश्वासियों को पूर्णतः आश्चर्यचकित कर देने वाली घटना है। हमने समाचार पत्र में पढ़ा कि जिला मुजफ्फरनगर के खेड़ी अलीपुर गांव में एक जाट के यहाँ एक ऐसे बालक ने जन्म लिया जो अपने पूर्व जन्म की बातें बताता है और वह 9 बरस तक बराबर पीपल के वृक्ष पर प्रेत बनकर रहा है। ये सब जब हमने अखबार में पढ़ा तो हमें आश्चर्य का ठिकाना नहीं हुआ, तो हम इसकी जांच पड़ताल करने के लिए स्वयं मुजफ्फरनगर गए और वहाँ ब्राह्मण वाणी नामक मासिक पत्रिका के जो संपादक थे गोस्वामी ब्रह्मदत्त जी उनसे हम मिले। उन्होंने हमको जांच की हुई सत्य घटना आद्योपांत सुनाई पर हमको इतने पर भी संतोष नहीं हुआ। तब हम मार्च 1960 में फिर से अपने पुत्र शिव कुमार गोयल को साथ लेकर मुजफ्फरनगर गए और वहाँ से अपने सुप्रसिद्ध संत कल्याण देव जी महाराज को लेकर खेड़ी अलीपुर गए और वहाँ पुनर्जन्म की बातें बताने वाले उस लड़के के चाचा शीतल प्रसाद तथा अन्य सगे संबंधियों से एवं गांव वालों से मिले और उनसे हमने पूछा कि सच्ची बताओ वास्तविक घटना क्या है, तो हमको इसका पूरा ज्ञान चाहिए। तो इसका पूरा पूरा पता लगाया। गांव से वापिस आने पर पंडित ब्रह्मदत्त शर्मा से दोबारा हमने भेंट की। हम सबके पहले सुप्रसिद्ध आर्य समाजी नेता ब्रह्मदत्त शर्मा जांच के द्वारा जांच हो गई थी और फिर जो है हमने भी जो सत्य घटना देखी वो हम सब सामने रख रहे हैं। ब्रह्मदत्त जी ने हमको बताया जिला मुजफ्फरनगर में ये बात फैली थी कि शिकारपुर में 5 वर्ष का एक बालक अपने पिछले जन्म की बात बतलाता है। सन्मार्ग काशी में यह समाचार प्रकाशित हुआ। मुझे इस बात में न तो विश्वास था और न दिलचस्पी थी, लेकिन लोगों के बहुत कहने पर एक दिन प्रातः 6:30 बजे शिकारपुर पहुंच गया। वह लड़का मुझे वहां पर सोता हुआ मिला, उसे जगाया गया। लड़का 5 वर्ष का था और उस समय कुछ तुतलाता बोलता था। वह पंडित लक्ष्मी चंद के यहाँ 28/4/1951 से आया हुआ था। पंडित लक्ष्मी चंद को अपना पिता और उनकी स्त्री को अपनी माता कहता था। पंडित लक्ष्मी चंद के 3 कन्याएं प्रकाशवती कैलाशवती और सरला देवी 17 वर्ष की 20 वर्ष की और 28 वर्ष की थी। इस प्रकार 2 लड़के रविदत्त और विष्णुदत्त 10 वर्ष और 12 वर्ष के रहे। इन सब के बीच वह बालक बड़े प्रेम से रह रहा था। गांव खेड़ी अलीपुर जिला मुजफ्फरनगर में वह लड़का कलीराम जाट के यहाँ पैदा हुआ। वहाँ उसका नाम वीर सिंह रखा गया था। जब वह 3.5 बरस का हुआ तब से यही कह रहा था कि मैं शिकारपुर का हूँ, मेरा नाम सोमदत्त है, मेरे पिता का नाम लक्ष्मीचंद है, मेरी माता मुझे मेले में जाने के लिए बहुत पैसा दिया करती थी। ये चर्चा बहुत फैली। खबर पाकर के 24/4/51 को लक्ष्मीचंद भी खेड़ी जो शिकारपुर से 5 कोस की दूरी पर है पहुंच गए। समाचार पाकर के सैकड़ों आदमी इकट्ठे हो गए। उस लड़के को लाया गया। जन समूह के बीच वो लड़का पंडित लक्ष्मीचंद से लिपट गया, पिताजी 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 कहकर पुकारने लगा। इसे शिकारपुर ले जाया गया। गांव के पास पहुंचते ही लड़के ने चिल्लाना शुरू कर दिया, ओ ये हमारा शिकारपुर गांव है। रास्ते में स्वयं पंडित लक्ष्मीचंद का जंगल में कुआं आदि देखकर कहने लगा कि ये हमारा कुआं है, ये हमारा खेत है। गांव में घुसते ही उसको अकेला छोड़ दिया। वह स्वयं ही गलियों के रास्ते चौराहे पहुंच गया। हजारों आदमी कौतुक देख रहे थे। इसी चौराहे के पास लक्ष्मीचंद का भी मकान था। वह उसे दूसरे घर में ले जाया गया तब वो कहने लगा, नहीं ये मेरा घर नहीं है, ये तो पटवारी का घर है। और वास्तव में वो पटवारी का ही घर था। धीरे धीरे चलकर इसने पंडित लक्ष्मीचंद जी का मकान अपने आप ही ढूंढ कर बता दिया कि ये मेरा मकान है। वो इसमें घुस गया। वहां 50 स्त्रियां लड़कियां इकट्ठी थीं। लक्ष्मीचंद की सब लड़कियों को इसने बारी बारी से पहचान कर बताया और लक्ष्मीचंद की स्त्री को देखकर कहा कि ये मेरी माँ है। परंतु उनसे दूर ही रहा। लड़के से पूछा कि तुम अपनी माँ जी से दूर क्यों हो, तो लड़के कहने लगा कि इस मेरी माँ ने आज तो मुझे कुछ दिया ही नहीं, तब मैं इसकी गोद में कैसे जाऊं, मुझे कुछ खाने को दे तो जाऊं, पहले मुझे खाने को देती थी। तो यह सुनकर के लक्ष्मीचंद जी की पत्नी ने इसे 5 रुपए का एक नोट दिखाया। नोट देखते ही वह उन्हें माँ 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 कहते हुए दौड़कर उनकी गोदी में बैठ गया। पूछने पर उसने बताया कि मैं 9 बरस तक बराबर पीपल पर प्रेत बनकर रहा हूं और ये पीपल लक्ष्मीचंद के मकान के पास ही था, एकदम पास में। मैं उस प्रेत अवस्था में कुएं में प्रवेश करके पानी पीता था और घर में जाकर रोटी खा लिया करता था। इसके बाद वह पंडित लक्ष्मीचंद जी के एक पुराने नौकर के बारे में पूछने लगा कि अमुक नाम का नौकर जो यहाँ रहता था वो कहाँ है। उसे भी उसने स्वयं ही भीड़ में पहचान लिया, ए वो यहाँ है, भीड़ में पहचान लिया। इसी प्रकार उसने पूर्व जन्म के भाइयों को भी पहचान लिया कि ये मेरे भाई है। अब वह लड़का खेड़ी गांव में जहां पैदा हुआ था वहां जाना ही नहीं चाहता। इसे बलात् 2 बार इसके गांव खेड़ी ले जाया गया। जो इस शरीर के पिता माता थे वो ले गए कि बेटा तो हमारा है, वो जाने पर तैयार नहीं। और वहां जबरदस्ती ले गए तो खाना नहीं खाया। लड़का कहता कि मैं तो ब्राह्मण लड़का हूं, ये जाट का घर है, मैं जाट का घर कैसे खाऊंगा, मैं जाटों के यहाँ कच्चा खाना कैसे खाऊंगा, कच्चे बर्तन हांडी दूध ये मैं कैसे काम में लेऊंगा, कच्ची हांडी का दूध कैसे पीऊंगा। तो 4-5 दिन में वे सब इसके लिए अलग बर्तन अलग दूध पिलाते रहे और अंत में वे परेशान हो गए, जाट परिवार परेशान हो गया। तब उसे तंग आकर के शिकारपुर लाकर लक्ष्मीचंद जी के पास छोड़ दिया कि आप रखो। अब वह अपने पहले जन्म के माता पिता के पास शिकारपुर में ही है। उसने स्कूल में पढ़ना जाना प्रारंभ कर दिया। स्कूल में मास्टरों तथा प्रतिष्ठित गांव के लोगों के सामने मैंने लड़कों से बात की, उसने उपर्युक्त बातें बतलवाने के सिवा और भी बहुत सी आश्चर्यजनक बातें बतलाईं। पंडित लक्ष्मीचंद, उनके लड़के तथा अन्य लोगों के द्वारा उसकी बताई हुई ये बातें सच्ची सिद्ध हुई। पंडित लक्ष्मीचंद ने मुझसे पूछा, इसे स्कूल में प्रवेश तो कराऊं, लेकिन पिता का नाम क्या लिखूं? इस शरीर के नाते तो ये कलीराम जाट का लड़का है और पूर्व जन्म से ये अपने आप को मेरा पुत्र बोलता है, क्या करूं, किसका नाम लिखूं? मेरे पास रहते इसका कौन सा वर्ण रहेगा, ब्राह्मण रहेगा क्या कि जाट रहेगा? इसके किस वर्ण में मैं शादी संबंध करूं, यह हमारे लिए मुश्किल हो गई। इस घटना से जहां पुनर्जन्म का सिद्धांत सत्य प्रमाणित होता है, वहीं 9 बरस तक पीपल पर प्रेत बनकर रहना भी एक अपूर्व आश्चर्यजनक बात है तथा 9 वर्षों के भीतर गांव में घटित होने वाली सभी घटनाओं की जानकारी वो बच्चा बराबर देता रहा और इससे भी सिद्ध हो गया कि 9 बरस तक उस पीपल पर प्रेत बनकर के रहा। लक्ष्मीचंद जी का कहना है कि 14 वर्ष पहले जब मेरा लड़का सोमदत्त 3.5 वर्ष का होकर मर गया था, उस समय कैलाशवती 6 बरस की थी, प्रकाशवती 3 वर्ष की थी और विष्णुदत्त 2 बरस का था और सरला रविदत्तो इसके मरने के बाद पैदा हुए। इसने कैलाशवती और प्रकाशवती तथा विष्णुदत्त को और बाद में पैदा होने वाले बच्चों को भी इसी कारण पहचान लिया कि वह मरने के पश्चात 9 बरस तक पीपल पर प्रेत में रहा, वहां से सब ये देखता था। क्या पीपल पर प्रेत बनकर रहना पुराणोक्त प्रेत योनि सत्ता की सत्यता को पुष्ट नहीं करता है? जरूर करता है। हमने जाकर स्वयं ने ये जांच की। हमने अपने पत्रकार पुत्र शिव कुमार गोयल को साथ लेकर पूज्यपाद कल्याण देव जी महाराज के साथ खेड़ी पहुंचे तो हमें पता लगा कि घटना अक्षर से सत्य है। लड़का वीर सिंह अपने पूर्व जन्म के माता पिता पंडित लक्ष्मीचंद के साथ रहता है और उसके पूर्व जन्म के पिता लक्ष्मीचंद आजकल शिकारपुर से चले गए हैं, वे जिला नैनीताल में रहते हैं। वह लड़का भी उन्हीं के साथ गया है और वे उसे अपने पास पुत्रों के समान बड़े प्रेम से रखते हैं। कभी कभी इस जन्म के माता पिता जो पास में खेड़ी में रहते हैं, अपने लड़के के सगे चाचा शीतल प्रसाद जाट से तथा और भी गांव के बहुत से लोगों से बातें की, हमको ये सब बात सुनाई। बात ये सुनाई कि कालीराम जाट के यहाँ जब ये लड़का पैदा हुआ तब किसी को स्वप्न में भी ये गुमान नहीं था कि यह पूर्व जन्म का लक्ष्मीचंद का पुत्र था और कभी यह यहाँ न रहकर हमारे अपने पूर्व जन्म के माता पिता के पहुँच जाएगा, किसी को भी मालूम नहीं था। एक बार यह हमारे गांव अलीपुर खेड़ी में ही गांव से बाहर एक बाग में खेल रहा था। अकस्मात उस बाग के सामने से होकर पंडित लक्ष्मीचंद की धर्मपत्नी गुजरी। वह कहीं जा रही थी तो एकदम वीर सिंह की दृष्टि, बालक था ये, इसकी दृष्टि उन पर पड़ी तो पढ़ते ही तत्काल इसको पूर्व जन्म की स्मृति आ गई। अरे, ये तो शिकारपुर में रहने वाली मेरे पिछले जन्म की माताजी हैं। वह उनसे बातचीत करना चाहता था कि इतने में वह आगे निकल गई। इसने घर पर आकर अपने इस जन्म की माता से कहा कि माँ, आज मेरे पहले जन्म की माँ बाग की तरफ आई थी पर वह मुझसे बोली नहीं और मेरे सामने से निकल गई। यह सुनकर माता को बड़ा आश्चर्य हुआ, पर माता ने देखा कि बच्चा है, यूं ही बालकपन की बातें करता है। माँ ने कहा, अरे माँ तो तेरी मैं हूं, वो तेरी कैसे माँ हो सकती है, तू तो बावला है, जा खेल। वो लड़का खेल में लग गया, वो बात भूल सी हो गई, गई आई हो गई। फिर अलीपुर खेड़ी गांव के पास प्रतिवर्ष हिंडन नदी के किनारे कार्तिक पूर्णिमा पर बहुत बड़ा मेला लगा करता है, जिसमें बहुत लोग उस दिन स्नान करने के निमित्त आया करते हैं। एक बार अलीपुर खेड़ी से भी बहुत से स्त्री पुरुष बालक बूढ़े स्नान करने के लिए आए। इस लड़के ने भी मेले में जाने का बड़ा आग्रह किया और कहा कि बहुत से लड़के मेले में जाएंगे, मैं भी वहाँ मेले में जाऊंगा। तो घर वालों ने बालक का हठ देखकर उसे भी गांव के साथ उस मेले में भेज दिया, गांव के लोगों के साथ। उसकी माँ ने उसे मेले में कोई चीज़ खाने के लिए 2 आने के पैसे दिए। वह 2 आने के पैसे लेकर प्रसन्न नहीं हुआ, उसे इतने बड़े मेले के लिए 2 आने पैसे देना बड़ा खटका। उसने रास्ते में मास्टर मुंशीलाल नामक एक आदमी से कहा, देखो मेरी इस जन्म की माँ कैसी है कि उसने मुझे इतने बड़े मेले के लिए 2 आने के पैसे दिए, भला इन 2 आने से क्या होता है। मेरे पिछले जन्म की माँ बड़ी अच्छी थी, मैं जब भी कभी मेले में जाता था तो वह मुझे मुट्ठी भरकर बहुत सारे पैसे दिया करती थी। यह तो ऐसी लोभन माँ नहीं थी जैसी ये लोभन माँ है, ऐसा बोलने लगा। लड़के की ये बात सुनकर मुंशी लाल को अचंभा हुआ, ये बालक कैसे बोलता है, कैसी बात करता है। पहले तो इसने इसकी बात को बिल्कुल झूठा ही समझा कि ये बालक यूं ही झूठ मूठ बोलता है, इस बालक की बात का क्या विश्वास, भला कहीं पिछले जन्म की बात याद आया करती है क्या, हमको तो नहीं आती, इसको आती है, वह पिछले जन्म की बात बताने लगा। पर जब उसने बालक के मुख से बार बार इस प्रकार की बात सुनी तब उसके मन में उत्सुकता पैदा हुई। उसने बालक से पूछा, तुम्हारी पहले जन्म की माँ कहाँ रहती है। उत्तर में बालक ने कहा, मेरे पहले जन्म की माँ शिकारपुर गांव में रहती है। ये पूछने पर कि तुम्हारे पहले जन्म के पिता का नाम बताओ, तो उसने नाम बताया, मेरे पिछले जन्म का पिता का नाम लक्ष्मी चंद है, और पहले जन्म का तुम्हारा नाम क्या है, कि मेरा नाम सोमदत्त है। इसके अलावा और भी बातें बताई। मुंशी लाल को अचंभा हुआ, उसने अपनी डायरी में सब बात नोट कर ली। नोट करके और उससे निश्चय किया कि शिकारपुर का कोई आदमी मिले तो हम बाल मालूम करें कि शिकारपुर में कोई लक्ष्मीचंद रहता है क्या, उसके कोई सोमदत्त लड़का था क्या। एक दिन अकस्मात उसे कहीं जाते हुए स्वयं पंडित लक्ष्मीचंद ही मिल गए, वह उन्हें जानता नहीं था। पंडित लक्ष्मीचंद अपने किसी आवश्यक कार्य के लिए जा रहे थे। जब इसने यूं ही पूछा कि अजी साहब, वो मुंशीलाल, अजी साहब आप कहाँ के रहने वाले हो, तब पंडित लक्ष्मीचंद ने कहा, मैं शिकारपुर का रहने वाला हूँ। फिर क्या था, डायरी में नाम तो नोट किया ही था उसने। उसने अपनी डायरी खोल करके कहा, अच्छा जी आप शिकारपुर में रहते हैं तो वहाँ कोई पंडित लक्ष्मीचंद नाम का व्यक्ति है क्या। उसने कहा, लक्ष्मीचंद नाम तो मेरा ही है। अच्छा आप ही का है, तो अच्छा बताओ आपके कोई सोमदत्त नाम का लड़का था, पुत्र था। हाँ हाँ मेरे एक सोमदत्त नाम का लड़का था। फिर लड़के की मृत्यु हो गई। जी हाँ उसकी मृत्यु हो गई। इस पर अब तो उसे पूरा विश्वास हो गया कि मुझे वीर सिंह ने अपने पूर्व जन्म की जो बात बताई थी वो सब बालकपन की झूठी बातें नहीं, सत्य है। इससे पंडित लक्ष्मीचंद ने इस प्रकार सब बातें मालूम करने का कारण पूछा, तो उसने सब कारण बताया कि लक्ष्मीचंद जी आपका जो सोमदत्त नाम का लड़का था उसकी मृत्यु हो चुकी, वह लड़का खेड़ी अलीपुर गांव में कलीराम जाट के घर में जन्म लिया है, उसका नाम वीर सिंह है और वो आपको तथा अपनी माता को बहुत याद करता है। लक्ष्मीचंद को आश्चर्य हुआ पर विश्वास उसको भी नहीं हुआ। उन्होंने कहा शायद यही ऐसा ही बोलते हैं। अब एक बार लक्ष्मीचंद को किसी काम से खेड़ी गांव ही आना पड़ा। वहाँ चौपाल में सब लोग बैठे हुए थे, गवाड़ में लोग बैठे हुए थे। उन्होंने किसी से लड़के को बुलवाया और पूछा कि यहाँ कोई वीर सिंह रहता है? वीर सिंह रहता है तो उसको बुलाओ। तो खेल खेल में लड़के था, वीर सिंह तो यही कह रहा, बुलाओ। वीर सिंह ने इस जन्म में अब से पहले कभी लक्ष्मीचंद को देखा ही नहीं था। जिस समय वीर सिंह आया तो एकदम सीधा दौड़ते दौड़ते लक्ष्मीचंद जी के पास चला गया, चिपक गया, फूट फूट करके रोने लगा। तो इतने लक्ष्मीचंद जी भी फूट फूट कर रोने लग गए, दोनों रो रहे। दोनों को इस प्रकार रोते देख करके चौपाल पर बैठे हुए सब गांव वासियों का हृदय भर आया। सब लोग रोने लग गए, उनको रोता देखकर पूछा क्या बात है। अब सबके हृदय में करुणा जगी। यह एक बिल्कुल अनोखी, आश्चर्यजनक एवं पूर्ण सत्य घटना है जो न कभी देखी गई न कभी सुनी गई उन लोगों के द्वारा। कुछ देर के बाद लक्ष्मीचंद ने लड़के के घर वाले से कहा कि तुम इस लड़के को तो हमें दे दो। इस पर लड़के के बाबा ने कहा, कहीं भला पूत भी किसी को दिया जाता है क्या? कोई छोटी मोटी चीज होती तो दे देते, हमारा लड़का कैसे दे दें आपको? अब तो ये लड़का हमारा हो गया, ये तो पिछले जन्म का था तो था। लक्ष्मीचंद से चिपटा हुआ वो लड़का कह रहा था, मुझे अपने साथ ले चलो पिताजी, मुझे अपने साथ ले चलो। और वो अपने चाचा से कह रहा था, मुझे अपने पिता के साथ भेज दो तो बड़ा अच्छा रहेगा। ये घटना बिजली की तरह गांव में फैल गई। हजारों आदमियों के बीच उस लड़के को शिकारपुर लाया गया। पूर्व जन्म की माता भाई बहन सबको पहचाना कि किस प्रकार पीपल पे रहा और लक्ष्मीचंद के घर में क्या क्या घटनाएं घटी 9 वर्ष में। वो बताने लग गया कि देखो मेरे मरने के बाद आपके ये हुआ, मेरे मरने के बाद वो हुआ। लड़के के चाचा शीतल प्रसाद जाट से बात करने पर मालूम हुआ कि वे आर्य समाज के विचारों के हैं और आर्य समाज के आंदोलन में जेल भी गए हैं। उनसे हमारे प्रश्नोत्तर हुए। आपका शुभ नाम क्या है? अब ये बता रहे हैं, आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम शीतल प्रसाद है। लड़का आपका क्या लगता है? ये मेरा सगा भतीजा है, मैं इसका चाचा लगता हूँ। क्या वास्तव में लड़के ने अपने पूर्व जन्म की सब बातें ठीक ठीक बतलाई है? जी हाँ, बिल्कुल अक्षर से सत्य है। आपको कोई संदेह है? यदि लड़का ठीक ठीक नहीं बताता तो उसकी बातें बिल्कुल सत्य नहीं होती, तो हम भला अपने लड़के को उस ब्राह्मण को क्यों सौंप देते? हमने इसीलिए सौंपा है कि उसकी बात बिल्कुल ठीक है। लड़का इस समय कहाँ पर है? लड़का इस समय पहले जन्म के पिता माता के पास शिकारपुर में है और अब वो शिकारपुर से नैनीताल गए हुए हैं। पंडित लक्ष्मीचंद ने वहाँ जाकर काम धंधा कर लिया है, लड़का भी उनके साथ गया है। न तो लड़का उन्हें अपने पूर्व जन्म के पिता मानकर छोड़ना चाहता है और न लक्ष्मीचंद उसको छोड़ना चाहते हैं, तो फिर हम इन दोनों के प्रेम में क्यों बाधा डालें? क्या लड़का कभी आपके पास रहता है? वहाँ पर ही रहता है, हमारे पास भी आ जाता है, परंतु रहता वहीं है। हमारा आपस में बड़ा प्रेम है। क्या वास्तव में लड़के ने ये बताया था कि वह पीपल पर 9 वर्ष तक प्रेत बनकर रहा? जी हाँ, उसने पीपल तक जाकर के बता दिया और ऐसी अनोखी घटनाएं बताई जिससे हमको पूर्ण विश्वास हो गया। इन सब बातों से हमको ये विश्वास करना चाहिए कि परलोक और पुनर्जन्म की सत्ता होती है। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण 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 नारायण
नारायण नारायण
नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्यावर रामचंद्र की मोर मुकुटवंशी वाले की अनंत श्री हरि रामदास जी महाराज की अनंत कोटि सर्व संत महात्माओं की भक्तवत्सल भगवान की जय आनंद कंद भगवान की जय